नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वालन से आपका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है बेटियों की पढ़ाई, इसी में सबकी भलाई। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भाग्यश्री जी गावंडे भाई। गावंडे भाई, बच्चियों की पढ़ाई इसी में सबकी भलाई, बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस तरीके से देखते हैं कि बालिकाएं इन दिनों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो या हायर सेकेंडरी लेवल की विद्यालय से कई बच्चियां छूट जाती है, पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही।
हाँ, नहीं ये तो है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सफर तय कर चुकी है बालिकाओं की पढ़ाई में। अगर हम पुराने समय को ले तो हम काफी अच्छे इसमें हैं, पर बेहतर इसमें नहीं है, बेहतर परिवेश में नहीं है आज भी। और कुछ कदम है जो लड़कियों की पढ़ाई के लिए आगे होनी चाहिए, तो इस तरफ से और कुछ होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। माँ दुर्गा आपके जीवन में ढेर सारी ऊर्जा लेके आए। अगर हम बालिकाओं की पढ़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वो जरूरी क्यों है वो कहते हैं। आपको पता है मराठी में कहा जाता है, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाला उधारी। यानी जो अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक अगर लड़का शिक्षित होता है तो वो स्वयं ही शिक्षित होगा, है ना। पर वो अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो आगे अपनी पूरी संतान है, परिवार है, उन सबको शिक्षित करती है। इसीलिए बालिका की शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आज भी मैंने एक चीज देखी है कि फर्क किया जाता है, एक्चुअली बेटे की पढ़ाई में और बेटी की पढ़ाई में दोनों में एक फर्क किया जाता है। जितनी उदारता से बेटे को पढ़ाया जाता है या बेटी की पढ़ाई पे जिस तरह से खर्च किया जाता है, उस तरह से बेटी के इसमें नहीं किया जाता है। आपने देखा बहुत सी गांव की, मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत पढ़ना चाहती है, पर उन्हें जैसे घर के काम से भी उन्हें फ्री नहीं किया जाता कभी, वो जिम्मेदारियों से उनको मुक्त नहीं किया जाता है। मतलब पढ़ना उनके लिए प्राइमरी काम नहीं रहता है, मतलब पढ़ना उनकी प्राथमिकता नहीं रहती, दुय्यमता दी जाती है उसमें। जैसे एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक प्राथमिकता दे के पढ़ा दे कि नहीं इसको पढ़ के कुछ बनना है, वैसे लड़की को प्राथमिक लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहती हूँ एक्चुअली। हाँ, मतलब जैसे उसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि जब तक खर्चा नहीं आएगा तब तक जितना पढ़ेगी पढ़ेगी, घर का सब कुछ करके पढ़ेगी पढ़ेगी, लेकिन सिर्फ मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है ये भावना की अभी तक कमी है। मतलब सबने चाहिए वो नहीं है, दुय्यमता है, लड़कियों के साथ दुय्यमता की जाती है। मुझे लगता है कि वो दुय्यमता नहीं होनी चाहिए, उनके एजुकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो लड़कियों का विकास होगा और लड़कियां पढ़ेगी। क्योंकि एक लड़की पढ़ेगी तो आगे पूरा जो परिवार है वो परिवार ही आगे जाता है। शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को आगे ले जाती है, शिक्षित पुरुष पुरुष नहीं ले जा सकता है, क्योंकि माता है जो बच्चे पे संस्कार करती है सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये दुय्यमता वाला जो एक हिस्सा है वो छूटना चाहिए, है ना, ताकि लड़कियां अग्रसर हो। हम इसमें ये सोचे, आपने देखा कि अभी भी गांव में ये रहता है कि इसकी शादी को खर्चा करना है, बेटी की शादी में लगाना है, फिर बेटी को इसमें खर्चा आता है, उसको शादी में खर्चा आता है, उसके शादी के बाद खर्चा आता है। तो ये चीजें हम अलग रखे और ऐसा सोचे कि उसको पहले तो अपने पैर पे खड़े रखिए कि वो खुद पढ़े और खुद सशक्त बने, खुद मजबूत बने। ये विचारधारा अब सब में आनी चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। लेकिन मतलब जैसे हम बड़े शहरी लेवल पे कहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ऐसा मत समझिए आपकी सुशिक्षित जो मतलब जो पैसे मतलब जैसे सक्षम परिवार है वो बेटी में दुय्यमता नहीं करते और जो गरीब है वो करते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें इकोनॉमिकल कोई मापदंड नहीं है। मैंने देखा है कई कई अच्छे परिवार वाले भी बेटियों की पढ़ाई के लिए दुय्यमता करते हैं, कहीं कम कम पढ़े लिखे लोग भी बेटी की पढ़ाई को प्रावधान देते हैं। बस मुझे लगता है एक पहल होनी चाहिए कि बेटा बेटी दोनों को एक जैसा, मैं तो बोलती हूँ एक जैसा, ना ज्यादा ना कम। हम ये भी नहीं कहते कि बेटियों को एक अलग से आप एक्स्ट्रा कुछ दीजिए, लेकिन एक जैसा तो बर्ताव होना चाहिए कि बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले बेटी की पढ़ाई हो जाए, पहले पढ़ाई बाद में बाकी सब। प्राथमिकता, प्राथमिक शब्द आना चाहिए और दुय्यम व्यवहार नहीं होना चाहिए। बस ये दो चीजें हैं जिस पर हम बेटी के विकास में और अग्रसर हो सकते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना।
शिशु मृत्यु और माता की मृत्यु, पोषण आहार के साथ साथ जैसी भी जो बेटियों को कई समस्या आती है, तो इसको किस तरीके से देखो?
पोषण आहार के लिए ना,
जी
वही तो मैंने कहा अभी। देखिए यही यही देखा जाता है जनरली, मतलब देखो हमारा जो एक ऐसा रहता है ना, एक रूढ़ी बन जाती है, मतलब हम पे इम्पैक्ट रहता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के जाते हैं, है ना। तो
जी
पहले से एक इम्पैक्ट है कि बेटे को अच्छा खिलाओ पिलाओ क्योंकि इसको आगे जाके काम करना है, लड़कियों को तो क्या घर में ही रहना है। मतलब एक एक माइंड में एक ये बैठा है कि जो घर में रहती है महिला है वो कुछ नहीं करती, सबसे पहली बात। पर ऐसा तो नहीं है, वो तो दुगना काम करती है और उसको दुगने आहार की जरूरत है, पोषक आहार की जरूरत है। दूसरा, एक स्त्री जब मतलब जैसे जब से वो गर्भधारणा करने की एज में आती है तब उसको बहुत ज्यादा पोषक आहार चाहिए, ये चीज भी सब भूल जाते हैं। जैसे लड़कियों का जब महीना महावारी शुरू होती है तो तब से ही जैसे लड़कों को लड़कों का मसल्स बढ़ेंगे, है ना, लड़कों में मसल्स बढ़ते हैं जब लड़के बढ़ती उम्र में आते हैं, तो ठीक है। वैसे ही जब लड़कियां बढ़ती उम्र में आती है तो लड़कियों का गर्भाधान होता है, और जैसे लड़कियों का मतलब जैसे एक इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, हार्मोनल स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती है। पर ये दोनों भी ग्रोथ होने के लिए सकस आहार की जरूरत है, अच्छे आहार की जरूरत है। लेकिन ये यहाँ पे भी दुय्यमता की जाती है, ये माना जाता है कि लड़कियों को अच्छे आहार की जरूरत नहीं है, और ये जरूरत वहां से है जब लड़कियों का मेंसेस शुरू होता है तब से, तो तभी से हम ये समझे कि उन्हें तभी से पोषक आहार की जरूरत है। फिर जब बच्चे गर्भधारणा होती है तब तो और ज्यादा है, तब तो डबल कैलोरी चाहिए माता को, है ना। और उसके बाद जब बच्चा दूध पीता है बच्चे के पोषण के लिए तब भी जरूरत है। तो ये पोषण आहार की जो जरूरतें है इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। और स्त्री के जीवन में तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, उस समय उसे और ज्यादा कैलोरी वाले आहार की जरूरत है, पोषक आहार की जरूरत है, और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
बेटियों की पढ़ाई को दूर कैसे किया जा सकता है, जिनके सामने जो ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र में पढ़ने आती है और उनके सामने कई कठिनाइयां आती है, इसको किस तरीके से
बहुत
दूर किया जा सकता है?
देखिए बेटियों को मैं सही में बता रही, जैसे मेरे यहाँ भी कुछ आती है लड़कियां, तो मैंने देखा है एक लड़की है उसको पिताजी नहीं है, वो एक दूरस्थ गांव है वहां से वो यहाँ आके रह रही है रूम करके, और फिर उसको इतनी सारी समस्या है। लड़कियों को बहुत सारी समस्याएं पार करनी पड़ती है, घर से भी कभी उनको परमिशन मिलता है कभी नहीं मिलता है अकेले रहने के लिए या रूम करके रहने के लिए। और मतलब जैसे एक तो समय भी ऐसा रहता है कि जैसे वो कोई जॉब करना चाहे तो भी उसके समय भी ऐसे रहते हैं कि उनको शाम को या रात में जॉब करने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना।
जी
और अब इसमें देखिए कुछ सुविधाएं मुझे लगता है आगे जाके होनी चाहिए, जैसे तहसील लेवल पे एटलीस्ट, जो अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है पर गवर्नमेंट ने इस तरह से तो कुछ करना चाहिए। मेट्रो सिटीज में आपने देखा है, मेट्रो सिटीज में है महिलाओं के वसति गृह है ना, महिलाओं को रहने के लिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल आप होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल वगैरह जो है वो तहसील लेवल पे भी बनने चाहिए ताकि लड़कियां बिंदास होके रह सके और घर घर के लोग भी उनको फ्रीली भेज सके। अगर उनको ये पता चले कि नहीं हमारी लड़कियां ऐसी जगह रह रही है तो वो शायद लड़कियों को ज्यादा इंकरेज करेंगे या ज्यादा उनको प्रोत्साहित करेंगे और वो भी राजी होंगे अपनी बेटी को भेजने के लिए। तो जैसे जो अभी जैसे आपने देखा होगा ना, लड़कियों के लिए रहते हैं कुछ हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जैसे कॉलेज गर्ल्स या फिर मतलब वर्किंग लड़कियां जो है जो जॉब करती है उनके लिए नहीं है, लेकिन तो वो भी चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की आपको पता है बहुत सी गर्ल्स क्या करती है, वो जॉब भी करती है और पढ़ती भी है, तो डबल जिम्मेदारी आपसे। और पता है घर में उनको खाना भी बनाना है, उनके वो अक्षम होती है बाहर से टिफिन लाने के लिए, तो वो अपना घर का भी काम करती है फिर जॉब भी करती है और फिर पढ़ती है। मैं ऐसे लड़कियों को तो मेरी तरफ से सैल्यूट है जो ऐसे करती है, मैं सही में बोल रही हूँ, वो मतलब बहुत प्रशंसा की पात्र है, मैंने ऐसे बहुत से देखी है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ऐसा कुछ बने, एक लड़कियों के लिए एक स्पेशल ऐसे कुछ हॉस्टल या कोई किसी के घर है तो उसमें ऐसी लड़कियों के लिए ही बनाया उसमें कि 8-10 लड़कियां एक ही इसमें रहे, 2-4 रूम के इसमें, तो ताकि उनको एक प्रोटेक्शन मिले। तो ये भी एक अच्छी पहल हो सकती है अगर इसमें हम करते हैं तो।
जी आज के परिवेश में दहेज प्रथा जैसी घटनाएं हो रही है और कई बेटियां इससे परेशान भी है, कई ने अपनी अपनी जान भी गंवाई है, इसको किस तरीके देखते हैं और क्या बदलाव आने चाहिए?
देखिए इसमें भी बदलाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको डाउरी डेट बोलते, डाउरी बोलते, डाउरी यानी दहेज है ना। तो देखिए दहेज मुझे लगता है, मैं सही में बताऊँ, मुझे कभी कभी कोई कोई चीजों का बहुत ये लगता है, अपने यहाँ भारत के बहुत सारी चीजें जैसे दहेज प्रथा बंद कितने समय से हो गई है ना, पर उसको अपने यहाँ ना ऐसे प्रथा है बंद तो बहुत समय से हो गई है, लेकिन वो ये बोलते हैं ना कि जैसे उसका इंस्टॉलेशन यानी उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत सारी प्रथाएं है जो बंद हो चुकी है, उस पर बंदी लग चुकी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी भी नहीं हुआ है। इसका कारण है कि हम जो सामाजिक व्यक्ति है ना वो उसको अपने पे आरोपित मतलब उसका एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग उसको बदलते नहीं है। तो जो रूढ़िवादी परंपरा वाले लोग हैं वो आज भी आपने देखा होगा दहेज लेते ही लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये दहेज की चीज दहेज कभी भी लड़की के जीवन में आ जाता है तो सबसे पहले उसमें तो ये भावना आ जाती है कि मुझे बेचा गया है, मैं एक वस्तु हूँ। तो जो खुद जो लड़की दहेज होके जाती है वो भी खुद को फिर एक मटेरियल समझती है, एक वस्तु समझती है, और जो परिवार में एक जाती है वो परिवार के सदस्य भी उसे वैसे ही समझते हैं, है ना। वो उसे एक व्यक्ति नहीं समझते, वो उसे एक वस्तु समझते हैं कि हमने कोई वस्तु लाई है कुछ अमाउंट ये करके, है ना। तो ये भावना जाने के लिए दहेज प्रथा सबसे पहले बंद होनी चाहिए। नो डाउट अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी क्या नहीं दिखने वाले लेवल पे दहेज प्रथा शुरू हो गई है ना। आपने देखा क्या, डायरेक्ट दहेज बंद हो गया, अब इनडायरेक्ट शुरू हो गया है, हमें फिर आप ये सामान दीजिए, हमें फिर आप ये सामान दीजिए, हम पैसे नहीं ले रहे, है ना। तो ये जो उसका विकृत रूप हुआ है, ये विकृति कहीं तो भी बंद होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है लड़कियों को इस तरह से शिक्षित करें कि वो दहेज अगर मांगते हैं तो आज शादी करने के लिए ही मना करें, तो हिम्मत करके उनका आगे आना पड़ेगा या कुछ कुछ तो उसमें आक्रामक कदम उठने चाहिए दहेज के लिए भी, नहीं तो ये प्रथा बंद नहीं होनी है, क्योंकि ये मतलब परिवर्तित हो चुकी है अभी, मतलब अभी उसका अपभ्रंशित रूप सामने है अपने जो कुछ है वो
जी।
आपने देखा होगा डायरेक्ट कोई भी बोलता है हमने दहेज नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वो 10-16 गोल्ड ले चुके होते हैं या फिर कोई गाड़ी ले चुके होते हैं, तो मेरी नजर में तो वो भी दहेज है, है ना। तो सामने वाले ने उसको भी दहेज मानना चाहिए और फिर उसका विरोध करना चाहिए, ये जरूरी है ना।
देश के गौरव में बेटियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ओलंपिक ओलंपिक में कांसी रजत के साथ साथ गोल्ड और भी अनेक काम देश की बेटियों ने किए हैं, तो इनको देखते हुए आज की बेटियों को कठिनाइयां जो आ रही हैं, तो सरकार ने भी इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि देश की बेटियां भी देश का गौरव बढ़ा रही है।
बिल्कुल वही मैंने आपको दो ही चीजें बोली है कि सरकार ने बस इस तरफ से तो कदम, देखिए कदम कैसे बढ़ते हैं ना, वो ना सहायता वाले कदम बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं क्या कि लड़कियों को ये राशि की सहायता दी जाएगी, वो दी जाएगी, वो बिल्कुल जरूरी है, पर कुछ कदम ऐसे भी उठने चाहिए जिससे ये बदलाव आए, यानी अवेयरनेस आए, एक्चुअली लोगों के वैचारिक लेवल पे भी बदलाव आए। इस तरह से कुछ चीजें होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जैसे मतलब जैसे विवाह होता है आपने देखा, जैसे दहेज वाला, तो उस चीज में भी इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए कि जिन्होंने शादी में कुछ लेन देन नहीं की या जिन्होंने शादी में कुछ ये नहीं किया उनको प्रोत्साहित कीजिए, या जो लड़कियों ने मतलब जैसे इनको ब्रांड बनाए, जैसे जो लड़कियां समाज से हटके कोई चीज करती है या सामाजिक रूढ़ी को तोड़ने के लिए कुछ करती है, तो मुझे लगता है सरकार ने इनको ब्रांड बना के इनके थ्रू एक इनको एक एक साल का एक अवेयरनेस वाला कुछ तो भी इनसे एक प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। एक्चुअली कोई भी चीज मुझे देखिए अवेयरनेस के बगैर नहीं होना है, हमें 10 बार कोई हमको बोल के जा रहा है ऐसा नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो ये चीज हम पे आरोपित हो जाएगी या कोई सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है करके, है ना, ठीक है। और वो जब उसे लेवल का कहेगा तो ज्यादा होगा, जब जैसे लड़कियां शिक्षा के लिए, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी महिलाएं हैं या गर्ल्स है उनके थ्रू अवेयरनेस किया जाए, लड़कियों को स्पोर्ट के लिए अगर इंकरेज करना है तो स्पोर्ट्स में जो गर्ल्स है उनको ब्रांड बनाया जाए, तो ये पहल अगर सरकार करती है तो मुझे लगता है कि काफी बदलाव आएंगे। ऐसा बदलाव बहुत आ भी रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते, पर फिर भी मुझे लगता है कि मंजिल अभी बाकी है और सफर भी बाकी है ना।
तो ये थी डॉक्टर भाग्यश्री गावंडी जी दाई, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से बेटियों की पढ़ाई इसी में सबकी भलाई इस विषय पर जानकारी दी। बताई मोबाइल वाले को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश।